रहा तो वो जरा
पहले आए तो पूरी खूब आदर करते थे, खूब आदर। कभी कभी हमने देखा है जैसे कोई कुछ सज्जन है, उनको चेयर पर बैठने के लिए दिया, चेयर पर बैठे बातचीत हो रहा है। दोनों को बात है वही शिष्य बैठेंगे और गुरु जी कहेंगे आओ बैठो बैठो यहाँ। यदि वो चाहता है जैसे बैठे हाँ इस पर बैठो, जब शासन करने योग्य समझेंगे बड़े बड़े दिग्गजनों को इसमें मोह हो जाता है कि इसमें निष्ठा है कि नहीं है। साधारण लोगों की तो बात क्या, नहीं समझ पाते। विदुर जी जहां जिस सभा में हैं, विदुर जी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी नंग धड़ंग आए और वहां पर सब ऋषि महर्षि बैठे हुए हैं। साधारण लोग क्या समझते हैं कि ये सुखदेव जी क्या है, समझे? नहीं समझ सकते। इसलिए इस वो विचार करके संतों का जो संग करेंगे वो समझ करके उनका आदर करेंगे और बताएंगे। भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण में यदि शिथिलता है तो समझो कि निष्ठा भी नहीं है, और यदि इसमें प्रबल उत्कंठा है तो ये निष्ठा का परिचायक है। गुण नहीं, वो जो पतला है पहले। भक्ति में प्रबल निष्ठा, कीर्तन में, श्रवण में और स्मरण में किनकी अधिक निष्ठा है और प्रबल उत्कंठा है, इस पर निष्ठा निर्भर करती है। इसके बाद में यही निष्ठा परिपक्व होकर के रुचि होती है। निष्ठा के समय में जब निष्ठा होती है उस समय बुद्धि पूर्वक हम भक्ति का आचरण करते हैं। बुद्धि पूर्वक माने भक्ति करना अच्छा है। हमको 16 से बढ़ा करके फिर 50,000, 50,000 से बढ़ा करके 75 और उसे बढ़ा करके 1,00,000 नाम हमको करना है। कर रहा नहीं, किंतु कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता, किंतु बुद्धि पूर्वक स्थिर करता है। और कभी कभी वो धीरे धीरे करते 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 1,00,000 नाम करने लगा। हमारे संपर्क में आकर के बहुत से स्कूल के भी लोग साधारण के तौर पर 1,00,000 हरि नाम करने लगे, जो कि 16 भी माला नहीं होती थी। कुछ लोगों का स्कूल में ये कहना था 16 से अधिक करने पर गुरुद्रोहिता होती है, क्योंकि गुरु जी ने कहा है 16 नाम करने का, इसे अधिक नहीं करना चाहिए। किसी किसी लोगों की, सबकी नहीं किंतु किसी किसी लोगों की ऐसी धारणा बनी हुई है 16 से अधिक नहीं करना चाहिए, बाकी सब किस काम में ये सब में लगना। शास्त्रों का ऐसा निर्देश नहीं है, महापुरुषों का भी निर्देश नहीं। तो स्वामी जी ने देखा जी अभी बच्चे अभी नवीन हैं, उनका अच्छे से 16 नाम भी करता है, 5 बार करो यही बहुत है। मैं तो कहता हूँ कि दिन में 1 बार भी तुम हरि नाम करो, 1 माला भी करो। तो ये देख करके ये सब बतलाया जाता है जी ऐसा करो वैसा करो। रुचि होते ही अब कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप उसमें मन लग गए। रुचि मैंने किया श्रवण कीर्तन और स्मरण में रोचकता आने लगती है। जैसे एक लड़के को स्कूल में दिया, पहले उसको पढ़ने में मन नहीं लगता, पहले गया अक्षर लिखाया तो वो लिख लिया, फिर दूसरे दिन आया तो उन्होंने कान थोड़ा सा गर्म कर दिया या डांट दिया तो मन खराब हो गया, अब स्कूल ही नहीं जाना। कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे अब बिना कहे हुए अपने आप जाता, उसमें रोचकता आने लगती। विशेष करके पाठ का अर्थ समझने पर किसी किसी छात्र का गणित में मन नहीं लगता, ज्योमेट्री में मन नहीं लगता, क्यों? उसकी थोड़ी समझ में नहीं आती, वो रट रट करके कितना करेगा और परीक्षा देने के समय में सब भूल हो जाता है। और जो थोड़ी समझता है ना उसको बड़ी रुचि होती है, जैसे भी कठिन से कठिन अंक हो उसको आनंद लगता है। एक बार हमने सुना है ये 10 प्रश्न थे आया था गणित का, उसमें अंतिम जो था बहुत क्लिष्ट था, बहुत कड़ा। सब लड़कों ने और सब प्रश्न किए किंतु वो नहीं किया, सब ने छोड़ दिया, और एक लड़का था उसने एक ही किया और सबको छोड़ दिया, उसको पूरा 100 मार्क मिला। देखा जैसे जब ये कठिन प्रश्न कर दिया तो ये जरूर साधारण सब प्रश्न कर दिया। तो रुचि ऐसी होती है, रुचि होने पर रोचकता आएगी, उस समय परिश्रम नहीं होता भजन में। निष्ठा में भजन में परिश्रम लगता है, मन नहीं लगता है, मन लगाना पड़ता है जोर से, और जहां रुचि हुई तब क्या होगा, रोचकता आने लगती है। रोचकता होने पर क्या होता है, अपने आप मन लगता है। कुछ दिनों के बाद ही ये परिपक्व हो जाने पर, नहीं करने पर उसको बुरा लगता है, खराब लगता है, जी आज न जाने क्या हमारे जीवन में क्या अभाव हो गया। इसलिए क्या है, सात कृष्ण नाम चरितादि सीताप विद्यो पितप तरस न रोचिकान। जैसे किसी को एक रोग होता है पीलिया, पहले पीलिया का एक ही इलाज था मिश्री का चूसना, मिश्री चूसता जाएगा और धीरे धीरे रोग दूर होता जाएगा। पहले वो मिश्री कड़वी लगेगी, इसके बाद में फिर जब रोग ठीक हो जाएगा मिश्री मीठी लगेगी, मीठी लगना ही उसका ये समझ लो कि यह रोग दूर हो गया। वैसे ही हरि नाम करने में, अभी हम लोगों को पीलिया रोग मने मायाग्रस्त है, अभी इच्छा नहीं कर रही है, नहीं लगता, किंतु हरि नाम करते करते निरंतर, साधुओं की सेवा करते करते, भागवत का श्रवण करते 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 जरूर होगा ही रुचि होगी, उस समय रुचिकर होने लगी है। ये रुचि दो प्रकार की है, एक वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणीय, वस्तु माने यहां पर श्रवण कीर्तन इत्यादि साधन। साधन में यदि ठाकुर जी का विग्रह है, सोने का मंदिर बनाया, खूब बहुत बड़ा विशाल 10 करोड़ रुपए का मंदिर बनाया, और उसमें सोने के राधा और कृष्ण और महाप्रभु जी, और हीरे जवाहरात मुक्तों से उनको जड़ दिया गया है, उनका अर्चन के समय में 3 बाल ब्रह्मचारी लोग खूब मोटे और बहुत सुंदर सुकांत शंख वादन कर रहे हैं, सोने के कलश से उनका अभिषेक हो रहा है, दूध घी दही मधु चीनी, और वेद मंत्र में 10-15 आदमी उच्चारण कर रहे हैं श्रुति मंत्र इत्यादि। वो क्या होता है, उसका क्या नाम है, पुरुष सूक्त इत्यादि, श्री सूक्त से उनका अभिषेक कर रहे हैं, और हजारों आदमी दर्शन करने के लिए जुटते हैं। कहें जैसे सोने का घड़ा एक मैं दूंगा, वो कहता है जी मैं दूंगा, एक लिस्ट बन गया, और हजारों आदमी बड़े बड़े धनी आदमी, जैसे आज हम बैकुंठ को पहुंच जाएंगे इसको देखने के लिए हजारों आदमी। ये क्या हुआ, ये यदि खूब इस तरह से अर्चन हो रहा है तो हजारों आदमी आएंगे, और एक आदमी अपने रोते हुए अपने अश्रुओं से ठाकुर जी को स्नान कर रहा है, कभी अपने मस्तक पर रखता है ठाकुर जी को, कभी अपने आंखों पर, कभी हृदय पर रखता है, और भावना पूर्वक उनको इस प्रकार से कहीं से गंगा जल या जमुना जल आया है और उसी से उनको स्नान कर रहा है, तुलसी दे करके बड़े प्रेम से लग्न से। दोनों में कौन सा अर्चन हुआ ठीक, किंतु जगत के लोग जो जिनको भक्ति नहीं है, जिनको निष्ठा रुचि नहीं है, इस चीज को नहीं समझेंगे, वो देखेंगे जैसे ऐसा विशाल रूप में हुआ जो विश्व में डंका बज गया, डंका बजाने में वो लोग मस्त हैं, सबरी जैसा और वो विदुर की पत्नी जैसा, भक्ति का ये लक्ष्य। साधन के तरफ में अर्चन करेंगे कैसे, रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं, कभी अपने सिर पर रखते हैं वो गिरधारी जी की शिला, कभी आंखों पर रखते हैं, कभी हृदय पर रखते हैं, कभी आंसुओं से स्नान करा देते हैं, और तुलसी दे करके और जल दे करके उनको सेवा करते हैं। ठाकुर जी सेवा से प्रसन्न हो गए और राधा कृष्ण की सेवा उनको दे दी। यह है यथार्थता। कीर्तन यदि हो रहा है, एक आदमी उसका लय बार बार टूट रहा है और जरा आवाज मोटी है, हारमोनियम से नहीं गान कर सकता, हारमोनियम बजाना जानता ही नहीं है, और मृदंग भी नहीं है, एक छोटी सी करताल है उसको टुन टान बजाता हुआ वो कीर्तन का। राधा रमन हरि गोविंद, राधा रमन हरि गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद। आंखों सांसों की धारा गिर रही है, भले ही स्वर नहीं है, इसको सुनने के लिए कृष्ण आ जाएंगे। तो जिन लोगों को कीर्तन में केवल पद और भाव जिनको प्यारा है उसमें रुचि है, ये श्रेष्ठ है। किंतु जहां हारमोनियम बज रहा है, तबला, इसराज, डुग्गी और नए नए क्या होते हैं वो सब, कंप्यूटर के सब बने हुए, ये सब मिला करके सभी एक साथ में एक लय से, और अच्छे अच्छी लड़कियां, छोटी सी सुंदरी, सुंदर गला, मधुर गला, और खड़ी होकर के अच्छे ड्रेस पहन करके गा रही हैं। देखिए, ये दिल्ली का सब दिल्ली टूट पड़ेगा वहाँ। और यदि तारकाएं आ गई बम्बई से और वहाँ पर गान कर रही हैं हरे कृष्ण, तो मजा, वहाँ पर मारामारी हो जाएगी टिकट के लिए, कोई भीतर में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसी रुचि जो होती है वस्तु की वैशिष्ट की अपेक्षा रखती है, वहां पर कोई अपेक्षा नहीं है, पर श्रवण कीर्तन मानने से ही हरिदास ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, हारमोनियम बज रहा है ना, तबला बज रहा है ना, डुगी बज रहा है ना, क्या बज रहा है, कभी जा रहे हैं रास्ते में कृष्ण करते हैं, नृत्य करते हैं, कभी लोट पोट कर रहे हैं, ये लिखा है। जब वो प्रहलाद महाराज जी जब कीर्तन करते हैं समुद्र के किनारे, कैसे अकेले हैं, श्रोता पेड़ पौधे और वृक्ष लता, ये गुल्म और घास है, और समुद्र का पानी है उनका श्रोता, किसी को दिखलाने के लिए नहीं कर रहे। और कभी कीर्तन में मत हो जाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी जन्मी में पलोटते हैं, कभी अपने को धिक्कार देते हैं, हाय 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 क्या हो गया, हमें प्रेम नहीं हुआ, और कभी रोदन करते हैं। ये कीर्तन कैसा है, ये यदि किसी के श्रवण में आ जाए तो उसका तत्क्षणात् कल्याण हो जाएगा। इसलिए एक रुचि होती है वस्तु के वैशिष्ट की अपेक्षा नहीं रखती, ये अलंकार है कि नहीं, और सुंदर रूप में ये हो रहा है कि नहीं, या सोने के घड़े से ये अभिषेक हो रहा है कि नहीं है, या कीर्तन में ये सब चीजें नहीं, या कहीं पर पाठ प्रवचन हो रहा है, कोई वक्ता है, भावुक है, रसिक है और तत्वज्ञ है, बड़ी सुंदर उसे पाठ कर रहा है, यदि उसमें उसके शब्दों में अलंकार नहीं है, यदि उसकी तान सुरली नहीं है, कोई बात नहीं, वही सुनता है जिसको रुचि है। और जिसको ऐसी रुचि नहीं है वो क्या करेगा, कुछ नहीं जानता, भक्ति नहीं है, संसार में रचा पचा हुआ, पैसे के लिए बिजनेस करता हुआ भागवत का पाठ करने आ गया, और इसी को जो कुछ प्रणामी मिलेगी वो देखता है, जी प्रणामी आज कितनी मिली, और लेकर के घर का पालन पोषण करता है। भक्ति से कोई संबंध न, हरिनाम करता है न कुछ, सभा में आता है तो तिलक कर लेता है फिर मिटा देता है, न एकादशी व्रत करता है, न कुछ नियम से कुछ करता है, न कोई उसका गुरु है, किंतु सुर से करता है, और बड़ी रसीली कथा जोड़ देता है, तेरे गुड़ को मलाई से रगड़ दी रे सुन करके लोग कहते वाह वाह वाह, ताली बज गई है, ये इतना सुंदर कीर्तन किया है तो उसे कल्याण नहीं होने का, दोनों में रुचि कौन सी थी, वो रुचि नहीं से कुछ अच्छी है, भली है, जो कि केवल ताल स्वर इत्यादि सुनते हैं, या वैसा सुंदर रूप में कोई कीर्तन कर रहा है या प्रवचन कर रहा है, नहीं से तो अच्छा है, नहीं बाबा से भी, नहीं पिता होने से भी, यदि काना पिता भी है तो अच्छा है ना,
नहीं मामा से काना
मामा, मामा है नहीं उससे अच्छा है, जो काना भी मामा है तो मामा तो है, तो ऐसे है। किंतु रुचि होनी चाहिए कैसी, वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं, ताल स्वर की नहीं, न किसी चीज की, बस प्रेम की अपेक्षा रखनी, तो ऐसी हमारी रुचि होनी चाहिए। ठाकुर जी को यदि हमारे बंसीदास बाबा जी नवद्वीप में थे, वो ठाकुर जी को नित्यानंद प्रभु और गौर की इतनी बड़ी बड़ी पीतल की मूर्ति थी, और उनसे रोज उनकी लड़ाई होती, जैसे ये तो अच्छा है, ये गौर निताई अच्छा है,
सीधा सादा,
सीधा सादा, ये जो है बड़ा, ये चंट है, आज तुम्हारी हम नहीं सेवा करेंगे। इस तरह से उनसे लड़ाई करते हैं और बड़े भाव से सेवा करते हैं। साधारण लोग समझ नहीं पाते ये कहाँ उच्च महाभागवत है। इसलिए रुचि हमारी ऐसी होनी चाहिए, ये कौन विचार करेगा ये उनकी रुचि है ना उसकी रुचि है, विचार कौन करेगा? जिसको भक्ति है, जिसको रुचि है, वो विचार करके देखेगा। जैसे किसी को भूख नहीं है और रसोई बनी है, मैंने पूछा आज क्या क्या रसोई बनी, सब्जी क्या क्या बनी है, किस लिए पूछता है भूख नहीं है? और जिसको भूख खूब लगी हुई है वो पूछेगा जे क्या क्या बना है? जो कुछ मिला, सूखी रोटी और सब्जी भी मिल गई तो बस तृप्त होगा खा करके। और जिसको भूख नहीं है, पूरी मलाई घी और जो कुछ भी बनाओ वो इधर जा कर करके फिर छोड़ कर। इसलिए प्रेम की भूख हो तब तो ठीक है, अप्रेम की भूख नहीं है, उसको रुचि नहीं है भगवान के भजन के साधनों में, यह रुचि भी साधन तक सीमित है। साधनों में रुचि होनी चाहिए, साधन उत्साह और प्रबल उत्कंठा होना चाहिए। मैं इतना नाम करूंगा, आज मैं भागवत की इतनी कथा सुनूंगा, वैष्णव से मिलूंगा, उनसे हरि कथा सुनूंगा, मैं समय समय पर वृंदावन में जाऊंगा, वहां पर संतों से भेंट होगी, कुछ हरि कथा सुनूंगा, सब चीज का एक नियम रूपरेखा बना देते हैं जिनको रुचि है। आज जिनको रुचि नहीं है, इसलिए पहली में प्रौढ़ उल्लासमयी रुचि है, प्रौढ़ और उल्लासमयी, उसकी निष्ठा कैसी है? प्रौढ़ और उल्लासमयी, श्रवण में उल्लास, कीर्तन में उल्लास, ठाकुर जी के भोजन में उल्लास, अर्चन में उल्लास, सब काम में उल्लास होगा। और जिसका वैसा नहीं है वो सब में मरा हुआ मन लेकर के ये सब करेगा, कर्तव्य निष्ठा से करेगा। दूसरी प्रकार की जो, या पहले प्रकार की जो प्रौढ़ उल्लासमयी जो रुचि है, उसके द्वारा अंतःकरण बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है, कुछ अनर्थ भी रहते हैं वो भी दूर हो जाते हैं भगवान के चरणों में, तब वो आसक्ति होती है। आसक्ति होती है तब, उसमें जब रुचि प्रौढ़ हो जाती है तब आसक्ति होती है। रुचि में साधन में रुचि होती है और आसक्ति किस में होती है? भगवान के चरणों में, भजनीय में, भजन में होती है रुचि, और वही परिणित हो जाती है किस में? भजनीय कृष्ण और राधा जी में उसकी रुचि हो जाती है, वही प्रवश होने पर यह आसक्ति कहलाती है। रुचि में कृष्ण के प्रति उतनी कोई रुचि नहीं है, केवल श्रवण कीर्तन स्मरण में रुचि है, किंतु यही करते करते कुछ दिनों में बदल जाएगा और श्रवण कीर्तन में भी रुचि रहेगी और उल्लास में रुचि हो जाएगी भजनीय कृष्ण में। ये आसक्ति का लक्षण, आसक्ति का लक्षण होने पर बिना आसक्ति हुए व्यक्ति को वो समझ में नहीं आएगी ये किस अवस्था में ये विचरण कर रहा है, बहुत ऊपर चला जाता है। ये रुचि जिसको हो जाती है उसका एक लक्षण बताते हैं, जिसको रुचि, अभी जो श्लोक मैंने कहा श्रीमतांग स्वकथा ही वाला, उसी की व्याख्या में बतला रहे हैं। रुचि अभी आरंभ हुई है किंतु अभी पक्की नहीं हुई। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी उदाहरण में ये बतला रहे हैं, कोई एक व्यक्ति जिसकी रुचि हो गई है भगवान के नाम में, श्रवण में, कीर्तन करने में यदि हो गई है, स्मरण करने में, तो वो किसी साधारण व्यक्ति को देख करके कहीं जा रहा है, कहे तुम क्या कर रहा है, दिन रात विषयों में के चर्चा में लगा हुआ है और भगवान की हरि कथा जो है ये अमृत के समान है, उसको छोड़ करके उसमें लगा हुआ है। फिर खेत से कहता है, मैं इसको क्या कहूँ, मेरा दुर्भाग्य है, धिक्कार है मुझको, मेरे सारा जीवन ऐसे ही बिता दिया। भगवान के भजन में हमारी रुचि नहीं, बहुत खेद करने लगता है। गुरुजी ने हमें एक परम रत्न दिया था दीक्षा में, ये मंत्र दिए थे, कृष्ण के संबंध सूचक गोपाल मंत्र, गुरु मंत्र, गोपाल मंत्र, काम गायत्री दिए थे। ये क्या चीज है? ये गोलोक की वस्तु को देने के लिए ये है। ऐसा दिव्य रत्न दिया और हमारे खूंटे में, हमारे वो क्या कहते हैं कपड़े के आंचल में बांध दिया, स्त्रियों को आंचल और पुरुषों के चादर आंचल में बांध दिया। किंतु मैंने इसका मर्म नहीं समझा। गुरु जी ये मंत्र दिया, यदि थोड़ा सा अभ्यास किया जाए कुछ दिनों में ही भगवान को वो दे देता है, किंतु है हमारा जीवन बेकार का गया। गुरु के जीव ऊपर में हमारा विश्वास नहीं रहा। मैंने इन मंत्रों का अच्छी तरह से ये नहीं किया, ध्यान नहीं किया, स्मरण नहीं किया, हमने कीर्तन नहीं किया, हमने वो जो वासना थी कृष्ण सेवा की इसको मैंने समझा नहीं। हमने फिर वो कहता कि है मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। इस प्रकार से कभी जमीन में लौटता है, कभी रोता है, कभी कलपता है, कभी कुछ करता है, जिसको ये रुचि हो जाती है। सब समय वो भूल जाता है शरीर के, अपने संसारी कामों को भी भूल करके बस उसी में निविष्ट हो जाता है। कहते कि है अब से मैं किसी असत वार्ता में नहीं होगा, जहाँ पर कोई हरि कथा होती है वहाँ पर जाकर के बैठ जाता है, साधुओं का संग उसके लिए अच्छा लगता है, यदि नहीं मिलता है तो स्वयं कीर्तन करता है। इस प्रकार से धीरे 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 उसके अंदर में निष्ठा होने लगती है, रुचि होने लगती है। रुचि होकर के फिर वो कहता है कहीं पर भागवत का पाठ हो रहा था, वहां पर पहुंचा और वो कह रहा है, ओहो एकदम से विचलित हो जाता है, विचलित माने भक्ति में एकदम डूब जाता है, कभी रोता है, कभी कुछ करता है। लोग कहते हैं ये पागल है, कोई कहता है ये न जाने क्या है, यहाँ पर क्यों आया, कभी लौटता पड़ता है, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। इस प्रकार से मनोरुचि उस साधक को हाथ पकड़ करके नित्य कराने लगती है, उसको शिक्षा देने लगती है रुचि ही, और उसको बढ़ाने लगती है। इस प्रकार से रुचि के लिए बतलाया। रुचि जबकि भजनीय वस्तु में कृष्ण के चरणों में जब हो जाती है तो इसी को कहते हैं आसक्ति। निष्ठा का एक लक्षण है ये, बहुत चेष्टा करने पर भी भगवान का स्मरण करते समय में, कीर्तन करने के समय में, चिंतन करने के समय में चित्त विषयों में चला जाता है, उसको फिर बड़ी मुश्किल से लाते हैं। और आसक्ति में क्या होता है, कब मन भगवान के चरणों में चला गया विषयों से, ये उसको पता नहीं लगता, उसके लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता, प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप विषयों से मन हट करके भगवान में चला, जब देखो तब भगवान की स्मृति, सो रहा है, जब नींद खुली देखा जी कृष्ण कृष्ण कर रहा हूं, सो करके उठा भगवान की कथाओं की चिंता उसकी हो गई, भगवान की लीलाओं का स्मरण हुआ, क्या लीला का स्मरण हुआ। जब वो सो करके उठता है देखता है कि अब कृष्ण के उठने का समय हो गया और उनकी निशांत लीला का स्मरण अपने आप होने लगता है परवश, इसलिए उसको कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता। आसक्ति में चेष्टा से पूर्व ही मन भगवत के विषय में लग जाता है, चेष्टा करने से पहले ही भगवान में उसका चित्त लग जाता है। यदि हम कोई एक लता लगाते हैं, बीज देते हैं, बीज से पौधा होता है, पौधे से पत्ते लगते हैं और पत्ते से पुष्प होते हैं कली, और कली से पुष्प, और पुष्प से उसी में फल लग जाते हैं, ठीक उसी तरह से गुरु जी ने मंत्र इत्यादि दिया, श्रद्धा दिया, कृष्ण सेवा की वासना दी, ये तो हुआ बीज, पत्ते हुए उसमें, पत्तों से फिर ये निष्ठा हुआ एक तरह से पत्ता, रुचि हुई उसमें, अब कली लगने लग गई, और नहीं तो वो आसक्ति है कली, और भाव है पुष्प और प्रेम उसका फल है। आसक्ति में चित्त, यही आसक्ति जब होती है तभी चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाब अग्नि निर्वापन, वहां से आरंभ हुआ। चेतो दर्पण मार्जनम यहां से आरंभ हुआ, इसके पहले चित्त रूपी दर्पण नहीं मार्जित होता है। जब तक कि आसक्ति नहीं हो और आसक्ति के साथ में कृष्ण से संबंध ज्ञान नहीं हो और नाम जो कीर्तन होता है उसे नहीं होगा। कब होगा? गुरु से दीक्षा इत्यादि होने के बाद में संबंध ज्ञान हो और फिर ऐसे आसक्ति के साथ में यदि भगवान का नाम लीला कथा सुनना इत्यादि हो तब चित्त अपने आप थोड़े दिन में ही मार्जित हो जाएगा और बिना अनायास ही भगवान के चित्त में उसमें जाएगा। इस स्थिति को साधारण आदमी जिसको आसक्ति नहीं हुई है नहीं समझ सकता, इसी को थोड़ा सा उदाहरण देकर के बतला रहे हैं। जिसको आसक्ति हो गई है उसको कैसे समझा जाए, उसका आचरण कैसा होता है? एक, जिसको आसक्ति हो गई है भगवान की लीला कथाओं और नाम इत्यादि में, एक समय प्रातः काल में वो निकला भोर भोर में, जाते ही देखा कि एक संत आ रहे हैं, ललाट में तिलक है, गले में तुलसी माला है और गले में एक कुछ झूल रहा है, वो क्या है? सालग्राम शिला। उनसे पूछा, महात्मा आप कहां से आ रहे हैं? मैं वृंदावन से आ रहा हूं। वृंदावन से? उसका हृदय आनंद से खिल उठा। वृंदावन में आप कहां रहते हैं? उन्होंने कहा, जो मैं सेवा कुंज में रहता हूं। और भी आनंदित, गले में ये क्या चीज है? ये सालग्राम की शिला है, मैं रोज इनका पूजन करता हूं। आपके बगल में क्या है? श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत है? एक श्लोक हमको पाठ करके सुना सकते हैं? बस उनके चरणों में प्रणाम करके और बैठ गया। महात्मा जी को दया आ गई, उन्होंने वो बैठ गए। कहे, एक श्लोक हमको भागवत का सुनाइए। तो उन्होंने श्लोक सुनाना आरंभ कर दिया। अक्ष्मतां फलमिदं न परम विदाम सक्का पशून अनुविवेश यतोर्वयस्य वक्त्रं बजेश सुतयो अनुवेनु जुष्टं जैवानि पीतं अनुरक्त कटाक्ष मोक्षं। बतला रहे हैं, आंख वालों का, आंखों का फल क्या है? कृष्ण का दर्शन करना। कौन से कृष्ण का दर्शन करना? जब सवेरे महात्मा जी कह रहे हैं और वो एकदम सुन रहा है तन्मय होकर, क्योंकि उसकी दृढ़ मन आसक्ति हो गई है, अब वो छोड़ नहीं रहा है। महात्मा जी वर्णन करने लगे, आंख वालों का, यही आंखों का एकमात्र फल है, दूसरा मैं नहीं जानता। ये कौन कह रहा है? गोपियां कह रहे हैं। और सखी, आंख वालों के आंखों का फल यही है कि कृष्ण जब गोचारण में जा रहे हैं, एक वन से दूसरे वन में प्रवेश कर रहे हैं, लाखों गायें उनके साथ में अब बछड़े हैं, फुदक रहे हैं, काली और धवली श्यामली गायें, और कृष्ण लाखों सखाओं के साथ में उनको घेरे हुए हैं। कृष्ण के अधरों में बंसी विराजित है, मधुर मंद मंद मुस्कान खेल रही उनके अधरों पर, अत्यंत सुंदर सर्वांग उनका है और वो मंद मुस्कान के साथ में बलदेव जी के साथ में बंसी बजाते हुए जा रहे हैं। उस समय यदि उनका कोई मुखारविंद देखे और उनका मंद मुस्कान देखता हुआ बंसी का आवाज यदि सुने, उसका जीवन कृतार्थ है, उसी की आंखें साफ रखे। दूसरा उन्होंने कहा, ब्रजेश की वक्त्रम ब्रजेश सुतयो अनुबेनु बीज जुष्टम ब्रजेश तनय, दो ब्रजेश तनय है, कौन? ब्रजेश सुतयो, सुतयो माने दो वचन, कृष्ण और बलदेव, ये दोनों ब्रजेश नंदन है, क्योंकि ब्रजेश नंद बलदेव जी नंदनंदन के पुत्र, नंद के पुत्र नहीं होने पर भी वो समझते हैं कि नंद ही हमारे पिता है, यशोदा मेरी मैया है, क्योंकि ब्रज ही में रहे जीवन से, जन्म उनका वहीं पर हुआ, इसलिए यशोदा जी उनका लालन पाल पोषण करती हैं, इसलिए वो समझते हैं कि नंद ही हमारे बाबा है। इसलिए कृष्ण और बलदेव दोनों बंसी बजाते हुए जा रहे हैं उनमें जो पीछे हैं अनुबेनुजुष्टम, पीछे से जो आ रहे हैं, कौन जा रहा है पीछे? आगे आगे बलदेव भैया जा रहा है और पीछे पीछे कृष्ण कन्हैया जा रहे हैं। जो पीछे हैं उनके मंद मुस्कान को बंसी के साथ में जो बजा रहे हैं, यदि किसी ने देखा तो उसका जीवन सार्थक है, उनकी आंखें सार्थक है। तीसरा एक और अर्थ किया, ब्रजेश सुतयो, एक का सुत का अर्थ किया नंदनंदन कृष्ण, और दूसरा किया ब्रजेश माने वृषभानु महाराज, उनकी सुता कौन है? राधा जी। तो ये दोनों जहां पर हैं, अनुबेनु कृष्ण ने पहले बंसी बजाई और राधा जी ने उनसे पकड़ करके पीछे से बजाने लगी, ये अनुबेनु जुष्टम। उस समय में कृष्ण उनके तरफ में देख रहे हैं, उनके कटाक्ष से उनके तरफ में देख रहे हैं। इस सुंदर मनोहर दृश्य को जो देखा उनका जीवन और आंखें धन्य है, महात्मा जी धन्य है, उनके चरणों में गिर गया। मैं आपकी क्या सेवा करूं बतलाइए। इस प्रकार से कुछ देर हरि कथा सुनने के बाद में आगे बढ़ा। ये महात्मा जी बोले हमको देर हो रही है, हमको वहां जाना है। अच्छा महात्मा जी चले गए। अब उन्हीं कीर्तन जो उन्होंने किया भागवत का, उसका स्मरण करते हुए आगे बढ़े। थोड़े से समय हो गया, ठीक। अब थोड़े से देर के बाद में आगे बढ़ा। थोड़ी देर के बाद में जब आगे बढ़ा तो इसको देखा, आगे जब बढ़ा तो उन्होंने देखा कि एक हिरण आ रहा है। तो हिरण आ रही है तो उसको देख करके ये कहता है, यदि ये हिरण दो कदम हमारे तरफ आ जाए, मैं समझूंगा कि आज कृष्ण के प्रति हमारी रुचि हो गई या आसक्ति हो गई, नहीं तो मैं समझूंगा कि नहीं। सचमुच में हिरण वो उनके तरफ में आकर के और फिर कुत्ता हुआ चला, कहा जी बस उस हिरण को प्रणाम किया दंड, आज हमको विश्वास हो जाए कृष्ण हमको दर्शन। यदि हिरण आया नहीं और वहीं से उलट करके भाग करके चला गया, आज हमारी भगवान के ऊपर में निष्ठा नहीं, हमारा जीवन धिक्कार है, कब भगवान मिलेंगे। इस तरह से वो रोने लग गया। एक पशु के चाल पर अपनी भक्ति को हुई कि नहीं हुई, इस प्रकार से वो देखता है। इसी तरह से जो कुछ देखता है उसी से वो मापने आगे बढ़ा। वो देखा जो कुछ बच्चे खेल रहे हैं, नंगे नंगे बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं। इसने देखा जी मालूम होता है ये सनकसनंदन सनत कुमार इत्यादि ऋषि लोग हैं, जाकर के एक उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया। अच्छा महात्मा जी ने बच्चे ये बतलाओ तो हमारी कृष्ण हमारे हम कृष्ण मिलेंगे कि नहीं। तो उसमें से एक ने कहा उहू। अच्छा उहू का अर्थ क्या? तब उसका मन विषादग्रस्त हो गया। और फिर यदि उहू का ज्यादा थोड़ा सा उच्चारण करके दूसरी तरफ से कर दिया तो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं होगा, तो जरूर होगी। एक साधारण सी बातों पर वो अपनी भक्ति को वो विचार करता है, हमारी भक्ति हुई कि नहीं। कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी जमीन में गिरता है, कभी कुछ करता है, ये आसक्ति का है। ऐसी आसक्ति यदि परिपक्व होगी तब प्रेम में हम भाव अवस्था आएगा। अभी ये मुकुल माने कली है, भाव अवस्था एक फूल है विकसित, वो फूल ही पीछे से जाकर के प्रेम होकर के और प्रेम फल देगा। इसलिए हम लोग प्रतीक्षित करनी चाहिए कब ऐसी भगवान के चरणों में हमारी आसक्ति आए, कैसे हम भजन कर सकें जो हमारी ऐसी भावनाएं हो। आज यहीं तक रहे, इसके बाद में भाव अवस्था में प्रेमावस्था में कैसी दशाएं होती हैं लोभ के लिए हम बतलाएंगे। अभी हमारी अवस्था नहीं है तभी बतलाएंगे, इसलिए कि हम लोगों को उसके लिए लोभ। जीवन में यदि भक्ति नहीं हुई तो कुछ नहीं हुआ, इसको लक्ष्य करके हमको चलना है। हमको संसार में मर्यादा धन रुपया पैसा स्वर्ग मोक्ष मुक्ति।